नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंटर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मेट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेटों में से एक है।
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं और इसके साथ तीन और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कैनलोस की डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से कर्जत थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइन का।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और उत्तर प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर आज भुवनेश्वर जाएंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजाम सोएद्दीन के साथ आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों की समीक्षा करेंगे, बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश करेंगे। इंडोनेशियाई मंत्री 26 से 27 नवंबर तक भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के सातवें आरोपी शोएब को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने एक अन्य संदिग्ध आमिर राशिद अली की हिरासत भी 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार विस्फोट से पहले आतंकी उमर उन नबी को रसद सहायता प्रदान की थी। अभिकरण ने कहा कि विस्फोट के पीछे की पूरी आतंकी साजिश का पता लगाने के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की राजकोषीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में पुरानी कमजोरियों को उजागर किया गया है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम की उन सार्वजनिक धमकियों की कड़ी निंदा की है जो उन्होंने जबरन गायब होने के मामले में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त के बचाव पक्ष के वकील को दी थी। फ्रांस में जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश ने ताजुल इस्लाम को उनके पद से तत्काल बर्खास्त करने, बार काउंसिल से उनके वकील के रूप में लाइसेंस को रद्द करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों की एक तटस्थ समिति से गहन जांच के बाद उन्हें कठोर दंड देने की मांग की। जेएमबीएफ ने कहा कि 23 नवंबर को जबरन गायब किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान मेजर जनरल सेवानिवृत्त जियाउल अहसन की बचाव पक्ष की वकील नाजनीन नाहर को ताजुल ने अदालत में धमकी दी थी। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने कहा है कि भारत और इसराइल आतंकवाद के साथ भ्रामक आख्यानों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने वर्षों तक हिंसा झेली है और अब आतंकवाद समर्थक देशों सहित जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम ने उच्च संभावना वाले भारतीय उपभोक्ता और औद्योगिक ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट में फैलने में मदद करने के लिए 250 मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है। इससे दुबई उनकी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि का केंद्र बन जाएगा। आईजीएफ के चेयरमैन मनोज लारवा ने कहा कि ये पहल भारत यूएई सहकारी के एक नए युग को दिखाती है। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में भारत के नाम पर मुहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।